अब इतनी बात के बाद एक सवाल उठाया है, क्या जिसको ये सारा कुछ मिल गया, कमन हुआ खालिदुम फिन्नार, उस शख्स के बराबर हो सकता है जो हमेशा के लिए आग में हो, बस सुकूमान हमीमन, जो पिलाए जाए खौलता हुआ पानी, वक़्त और जो उनकी अंतड़ियों को कुचल दे। अब ये तो अक्ल भी कहती है कि ये इंजाम नहीं अच्छा, पहले वाला अच्छा है, तो इसीलिए फिर आगे आयत 16-17 में ख्वाहिश परस्तों की कुछ बात है कि ख्वाहिश परस्त लोग हिदायत नहीं पाते, आयत 16-17, जिससे पता चलता है कि जब लोग आपके पास आकर बड़े गौर से सुने, बाहर जाकर मुख्तलिफ रवैयों का इजहार करें, लेकिन वो लोग जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है वो कहते थे कि अल्लाह के नबी ने बहुत अच्छी बातें की। यानी इसमें से में एक आधा वाक़िया है, लेकिन हमारे लिए इसमें अमल की बात यह है कि इल्म की महफिल से फ़ायदा वही उठा सकता है जो ख्वाहिश परस्त नहीं है। जिसके सर पे ख्वाहिश ही सवार, वो आज इस वजह से नहीं आया, आज उस वजह से देर हो गई, परसों किसी तीसरी वजह से जल्दी जाना पड़ेगा, अब क्या करें? नहीं होगा। इल्म का सफ़र, हिदायत का सफ़र दिल जमई से तय होता है। फिर इसके बाद मुनाफिकाना तर्ज़ अमल है आयत 18-23 में। याद रखिए कि इन सूरतों में अब मुनाफिकों के दिल की बातें जो थी ना, वो खुलने लग गई, इसीलिए लोगों को ये सूरतें चुभती हैं। इस सूरत पे भी बहुत ही सवाल जवाब होते हैं कि ये बातें क्यों हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात को पता है कि कौन सा बंदा किस दिल का है। तो लिहाजा इन आयात में मुनाफिकों का वो हाल जो नबी की महफिलों में कुरान के नज़ूल के वक्त होता था ना, उसके कुछ क्लेम्स हैं। मसलन जब वो आपको देखते हैं तो कैसे देखते हैं? नज़र अल मख्शिशी अलैहि मिनल मौत, यानी मौत की बेहोशियाँ किसी को तारी हो ना, इन नज़रों से वो आपको देखते थे। कभी कुछ कहते, कभी कहते हम बात मानेंगे, तो नहीं मानते थे। अल्लाह कहते इनको छोड़ दो और उन पे काम करो जो कुरान में गौर व फिक्र करते हैं। अगली आयत में कुरान पाक में तदब्बर की बात है, अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। आयत 24, कुरान पे तदब्बर ना करने वाले। तदब्बर क्या है? दुबर से पीछे लग जाओ, पुश्त को, बैक को, दिल के कुफल खोलने के लिए कुरान पे गौर व फिक्र ज़रूरी है, क्योंकि ये इल्म का सरचश्मा है। दिलों को ताले लगे होते हैं, इनको खोलने वाली चीज़ तदब्बुर है। कभी किसी एक आयत पे, कभी दूसरी पे किया करें, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि शैतान धोखे देकर निफाक पे ले आता है। आयत 25-28 में ये बात मौजूद है कि वो लोग इन्नल्लज़ीनर्तद्दुअलादबारिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हुदा, वो लोग जो हिदायत के वाजे होने के बाद अपनी पुश्तों पे फिर गए, होता क्या? शैतान सव्वलहुम वअमला लहुम, शैतान उनको इस तरह हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता बहका के ले जाता है और हम उसको मोहलत देते हैं। तो शैतान का ट्रिक है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदे को अल्लाह से दूर करता है, हत्ता के फिर ऐसा बंदा जब उसकी मौत का वक्त आएगा तो फरिश्ते उसकी पुश्तों और उसके चेहरे पे मारेंगे, क्योंकि अल्लाह उन पर नाराज़ था, अल्लाह ने उनके किए कराए पे पानी डाल दिया। फाह बता खपते अमाल इधर भी, यानी थोड़े थोड़े करके इनके अमाल ज़ाया कर दिए। आगे आए 29-31 में, अल्लाह ताला आजमाइश के ज़रिए मुनाफिकों को जाहिर कर देता है। अम हसीबल्लज़ीन फ़ी कुलूबिहिम मरद, क्या उन लोगों ने ये गुमान किया जिनके दिलों में बीमारी है कि अल्लाह उनके दिलों के कीने जाहिर नहीं करेगा? अच्छा, कुछ लोग दिल में बहुत दुश्मनी रखते हैं आपसे, हसद भी होता है, तकाबुल भी होता है, बदगुमानियाँ भी थोड़ी बहुत आ जाती हैं, मुंह पे बड़ी बातें करते हैं अच्छी अच्छी अल्लाह कहते हैं निफाक जिस दिल में होगा मैं उसको खोल के दुनिया से भेजूंगा, और अल्लाह चाहता तो वो सब कुछ दिखा देता उनको, लेकिन ये मीठी मीठी बातें बड़ी करते हैं। वला तारीफन्नहु में फीलाह निल कौल, नबी को सिम्टम्स बताई जा रही हैं कैसे लोगों की मीठी मीठी बातों को पहचाने। वो कहते हैं ना कि किरदार के नहीं गुफ्तार के गाजी हैं। मुनाफिक बातें करके दीन में कुछ नाम बनाना चाहता है, काम के वक्त पे वो पीछे आगे हो जाता है। अल्लाह जानता है तुम्हारे अमाल को, वला नब्लुवन्नकुम, और अलबत्ता हम ज़रूर तुमको आजमाएंगे, यहाँ तक कि मुजाहिदीन को भी देख लें और साबरीन को भी देख लें और ख़बरों को भी देखें कि वनब्लुवा अखबारकुम, क्या पता चला कि गुस्ताखाने रसूल की नेकियाँ बर्बाद कर दी जाती हैं। आयत 32-34 में इस पे बात हो रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते थे, कल तो उनके सामने करते थे ना, आज उनके नाम पे कई लोग बहुत गलत सलत बातें करते हैं। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों को बता दो, इन लजीना कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाह व शाक रसूल, ये जो शाक रसूल है ना, ये वही लफ्ज़ है जिसको उर्दू में आप कहते हैं ना शक हो गई, कब्र फट गई, यानी ये तो फट ही पड़ते हैं। इसके बाद कि इनके ऊपर हिदायत जाहिर हो गई है, अल्लाह के नबी के ऊपर बातें करते हैं, कभी उनकी बीवियों पे, कभी उनकी उम्र पे, कभी कुछ, इनकी सब नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। आप बाद में गिनिएगा, लस्तुबतिलू इधर कितनी दफ़ा आ रहा है, युखबत अमाल कितनी दफ़ा आ रहा है। देखिए एक बंदा जिसने नेकी की नहीं है वो भी नुकसान में है, लेकिन जो करे वो तो बड़ी अच्छी उम्मीदें लगा के बैठा होगा, पता चला वो तो सब रिजेक्ट हो गए। अल्लाह ताला ऐसे बुरे मामले से बचाए। फिर आगे आए 35-36 है, हिम्मत ना हारो, डट जाओ, फला तहिनू व तदू इलसल्म वन तुम लालऊ नवल्लाहुमाकुम वलयतिरकुमामालकुम, सुस्ती ना करो तुम तदू इलसल्म, और यानी यहाँ हिम्मत ना हारने और जट जाने की बात है, और जो पैगाम है वो क्या है, अंतुम लालऊ, बुलंदी तुम्हें मिलेगी। शर्त एक है कि तुम ईमान को बढ़ाते रहो, रह गई ये दुनिया, ये तो खेल और तमाशा। हाँ तुम ईमान ले और तकवा इख्तियार करो, तुम्हें तुम्हारे अजर पूरे दिए जाएंगे, और वला यसलकुम अम्वालकुम, तुमसे तुम्हारे अमाल तो नहीं मांगता। क्या पता चला कि अल्लाह तुम्हें कुछ देना चाहता है इसलिए तुमसे कुछ कभी मांग लेता है, वरना उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फिर आगे है, दीन के लिए कुर्बानी दो, वरना ये एजाज़ किसी और कौम को दे दिया जाएगा। ये बहुत अहम बात है। कभी कभी अल्लाह सुब्हान तआला हमारी ज़िंदगी में कोई नेकी का मौका ले आते हैं जिसमें कुर्बानी होगी, फितरत का असूल है, बच्चा भी दुनिया में कुर्बानियों के बगैर नहीं आता। एक लड़की दूसरे घर में आती है, कुर्बानियों के बगैर वहाँ जगह नहीं बनती उसकी। अब दीन के लिए आप कुर्बानी दे दो बच जाओगे, नहीं तो आप बदल जाओगे। इन यसल कुमूहा, अल्लाह कहते अगर कभी मैं तुमसे तुम्हारे कुछ माल मांग भी लूँ ना तो तुम बुखल करोगे, तुम्हारे दिल के कीने उस वक्त पता चलेंगे कि अंदर से तुम्हारे दिल कितने छोटे थे। ऐसे लोगों को जब भी पुकारा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करो, कुछ बखील बन जाते हैं, और जो बखील बनेगा बुखल करेगा अपने ही लिए नुकसानदेह है, और अल्लाह तो गनी है, वल्लाहु गनी वअंतुमुल फ़ुक़रा, सूरह फातिर में भी पढ़ा था ना, या अय्युन्नास अंतुमुल फ़ुक़रा वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। तो देखिए ये दोनों चीज़ें एक साथ साथ आती हैं, और जो जुमला हाईलाइट करने का वो क्या है, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, और वो तुमको ले जाएगा और एक ऐसे गिरोह को ले आएगा जो तुम जैसे नहीं होंगे। क्या पता चला, तब्दीली का असूल, चेंज कब आती है, जब लोग अपना काम ठीक नहीं करते तो बड़ी इज्जत से उनको फारिग कर दिया जाता है, शुक्रिया जजाकल्ला खैर बहुत आपने कर लिया, मेरा ख्याल है कि अब आप आराम करें। जब कोई ऐसे जुमले बोले तो समझ लें कि कोई गड़बड़ हो गई। असल में यह मुसलमानों को पैगाम दिया जा रहा है कि तुमने अगर दीन की नशरो इशात का काम ना किया, दीन की हिफाजत का काम ना किया, तो अल्लाह दूसरी कौमों को इस्लाम की तौफीक देकर तुमसे बदल देगा। इसके साथ ही साथ वो दीन की सरबुलंदी का काम जारी रखेंगे और दीन का तसलसल बाकी रहेगा। एक दुआ बड़ी खूबसूरत लफ्ज़ों में है, आप अपने तौर पे भी और भी उर्दू में मांग सकते हैं कि अल्लाह मुझे ना बदलना और मुझसे ही खिदमत देना। अल्लाहुम्मा ला तस्तब्दिलना, अपने लिए मांगेंगे तो अल्लाहुम्मा ला तस्तब्दिलनी व यस्तखदिमनी, क्या अल्लाह मुझसे दीन की खिदमत ले ले मुझे ना बदलना। तो ये खूबसूरत पैगाम था सूरत मोहम्मद का। आगे एक और खूबसूरत सूरत, सूरह फतह है, 29 आयात है, जो सारी के सारी कह लीजिए कि सहाबा कराम पे है। पहली 3 आयात सुलह हुदैबिया खुली फतह है, इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना लियगफिर लक अल्लाहुमा तकद्दम मिन ज़म्बिक वमा तअख्खर व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियका सिरातम मुस्तकीमा व यंसुरक अल्लाहु नसरन अज़ीज़ा। अल्लाह के नबी के एक ख्वाब की रोशनी में तकरीबन 1400 सहाबा का एक गिरोह सन 6 हिजरी में मदीना से मक्का आया। एहराम बांधे हुए थे, हदी के जानवर साथ थे, हथियार वगैरह नहीं थे, साफ वाजे था कि लब्बैक पढ़ते हुए तलबिया पुकारता हुआ ये गिरोह उम्रे के लिए जा रहा है। अरबों की रिवायत में भी नहीं था कि किसी उम्रे पे जाने वाले का रास्ता रोके, लेकिन मक्का वाले अना का शिकार हुए, नबी को निकाल चुके थे, दिल का गुस्सा ग्रह जब भी खत्म नहीं हुआ था, बिल्कुल हरम की हदूद के साथ हुदैबिया के मुकाम पे आपको रोक दिया गया। वहाँ बड़ी ही निगोसिएशंस हुई, हज़रत उस्मान को भेजा गया, बाद में उनके कत्ल की खबर फैल गई जो बाद में झूठी साबित हुई, लेकिन अल्लाह के नबी ने फिर वहाँ सहाबा को जमा करके एक बैत ली थी जिसको बैते रिजवान कहते हैं, यानी अल्लाह की रज़ा पाने वाली बैत। तो वहाँ अल्लाह के नबी ने जो वन साइडेड शर्तें मानी थी उस पे कुछ लोगों के दिल में खराबी थी कि ये कैसे हो गया, हम तो उम्रे के लिए आए, अल्लाह के नबी अब क्यों दब रहे हैं, क्या आप सच्चे नबी नहीं। हज़रत उमर ने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए तो वहाँ से ये फिर सारी सूरत हुई। अभी अब वापसी के रास्ते पे थे कि इन्ना फतह नला का फतह मुबीना नाजिल हुई। सहाबा किराम कहते हैं हम फतह मक्का को नहीं, हम हुदैबिया की मायदा हुआ था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया उसको फतह कहते हैं, क्योंकि वाकई फिर इसी की शरायत सिर्फ 2 साल के अंदर ही वो पूरी ना कर सके और अल्लाह के नबी को हुज्जत मिल गई, बगैर कोई खून खराबा किए सन 8 हिजरी में मक्का फतह कर लिया गया। इसका तذکرہ है, आइए ज़रा गो थ्रू करते हैं। आयत 4 से 7 में मोमिनों के दिलों की तसल्ली है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने नबी का साथ जो दिया है, तुम्हारे दिलों में सकीना डाल दी, तुम्हारे ईमान को बढ़ा दिया, और अल्लाह के तो सारे के सारे लश्कर है जो ज़मीन और आसमान में है। तो जिस रब ने दुनिया में तुम्हें ये दिया है वो आखरत में भी तुम्हें तुम्हारे ईमान की वजह से जन्नतों के वादे देता है जिसमें हमेशगी है और उनकी बुराइयाँ भी दूर हो जाएंगी, और अल्लाह की नज़रों में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। साथ ही मुनाफिकीन की बात है, याद रखिए जहाँ कोई अमली काम आएगा मुनाफिक खुल के सामने आएंगे। हर जंग के साथ ये बात हुई, हर सूरत में ऐसी सूरत जिसमें ऐसी बातें वो हम देख रहे हैं। तो या फिर वयुअज़्ज़िब वल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात और उससे आगे बात करके असल में मोमिनों को ये तसल्ली दी जा रही है कि अगर तुम्हारी ये सारी दौड़ धूप अल्लाह के लिए ना तो बेफिक्र हो जाओ। फिर आयत नंबर 8 से 9 में अल्लाह के नबी का मुकाम बताया गया। 4 चीज़ें आप देख लीजिए, शाहिद थे आप, मुबशिर थे, नज़ीर थे, और साथ ही साथ लितूमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहू बुकरतम व असीला। इसी तरह की मिलती जुलती आयत आप पीछे सूरत अलहज़ाब में पढ़ चुके, वहाँ गज़वे खंदक का जिक्र था, यहाँ हुदैबिया के सफ़र के साथ जोड़ दिया। क्या पता चला कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद उनकी इज्जत, उनकी तौकीर ना की जाए, उनके मिशन का साथी ना बना जाए तो बात नहीं बनेगी। फिर जो हज़रत उस्मान की शहादत की खबर सुनकर जो एक बैत हुई थी उसका तذکرہ आयत 10 में है, आगे भी आएगा। बैते रिजवान करने वालों की तहसीन, खूबियाँ उनकी अल्लाह ताला तारीफ़ फरमा रहे हैं, इन अल्लज़ीन युबायिउनक इन्नमा युबायिउनल्लाह। क्या पता चला कि वो लोग जो आपके साथ दरख्त के नीचे बैत कर रहे हैं तो उन पे अल्लाह का हाथ है, जो इससे फिर क्या इसको तोड़ेगा तो वो अपने नफ्स से पीछे होगा, जो इसको पूरा करेगा तो अल्लाह उसको अजर अजीम देगा। ये है वो बैत जिसकी वजह से असहाबे बैते रिजवान कहते हैं, और रिजवान क्या, अल्लाह की रजा मिल गई, और तो कोई मुश्किल आई ना, लेकिन अल्लाह ने इरादों का इम्तिहान ले लिया। आयत 11 से 14 में अल्लाह की राह में निकलने से गुरेज करने का कोई जवाज़ नहीं, यानी अब तुम्हारे पास कोई उज़र नहीं बाकी रह गया। वो लोग जो इस सफ़र में साथ नहीं जा चुके थे क्योंकि उनको पता था कि इधर मिलना कुछ नहीं, और दुश्मन के मुल्क में जाकर आप उमरा करने जा रहे हैं क्योंकि मक्का वाले उस वक़्त तक दुश्मन थे, बाद में जब दूसरे अम्वाल का मौका आया, खैबर की फतूहात और बाकी चीज़ें, तो जाने लगे तो कहा नहीं जा सकते, वहाँ बहाने देख लीजिए, शगलत नाम वालू ना वाहलू ना, हाय क्या करे, दिल तो बड़ा ही चाहता है लेकिन हमारे माल कमाइयाँ कारोबार दुकान बिजनेस ने हमें मसरूफ़ कर दिया और हमारे घर भी ये तो है ना, हाँ लेकिन फस्तग़फिर लाना, आज भी लोग यही करते हैं। आप ऐसे हमें दुआओं में याद रखिएगा, हम जा नहीं सकते, कर नहीं सकते, बाजार भी जाना है, अभी ये भी करना है, अभी पार्लर भी जाना है, यानी मसरूफियात की एक लंबी लिस्ट होती है जब अल्लाह के रास्ते में निकलने की बात की जाए। हाँ लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए। फिर इसके बाद आगे फतह खैबर की बिशारत और मुनाफिकीन की महरूमी है, आयत 15 से 17 में। इसके फ़ौरन बाद ही सन 7 हिजरी में खैबर का मौका आ गया था जिसमें बहुत माल गनीमत मिलने की उम्मीद थी, बल्कि कह लीजिए कि हिजरत से लेकर खैबर तक चूल्हे नहीं जले और जब खैबर के माले गनीमत को बांटा गया तो हर सहाबी खुद कफील हो गया। इसमें चाल टपक रही थी उन लोगों की जो इन्हीं चीज़ों के फ़ायदों के लिए जाते आते हैं, तो अल्लाह ने मना कर दिया कि ये जो पीछे रह जाते हैं ये कहेंगे वो कहेंगे, ये सुनने के लायक है? एक एक लफ्ज़ सा या कूल फिर अल मुखल्लफून क्यों आया है? पढ़ते हुए भी आंखें गीली रहती हैं कि अल्लाह तेरा कलाम कितना प्यारा है और तेरे नबी ने कितनी मुश्किलात से। लेकिन ये तो वही करेंगे ना कि जो पहले सबीलुल जन्नत कर चुके होंगे। नूरुल्ला नूर के बाद हम ऑफर करते हैं वो कोर्स। दुआ कीजिए इन खूबसूरत घड़ियों में कि अल्लाह हमें इल्म के लिए चुन ले। यानी कहीं ना कहीं जुड़ जाइए, आपके बच्चे, आपके बेटे, फैमिलीज हैं, आप हैं। इस वक्त ये जो हमारा मुसलमानों का स्पेशली पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं ना, इसका ओनली सोल्यूशन वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया। हर तरह महंगाई, गुरबत, बीमारियाँ, परेशानियाँ और फिरकावारियत सब का एक इलाज अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे। फिर आगे बहते रिजवान करने वालों के लिए बशारते हैं। आयत 18 से 21 में कुरान सीखने के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पे हमें सीखना होगा। ये नहीं है कि दिल के आगे ना किया, कभी आए कभी नहीं। अच्छा हम बैठते हैं, 100 दफ़ा आइए, आपको रोकेगा कोई नहीं आने पे। आप एज ए लिसनर 100 दफ़ा आए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक कि आप कमिटमेंट नहीं करेंगे। तो वहाँ हुआ तो कुछ नहीं, जब बैत हो गई पता चला नहीं नहीं उस्मान तो नहीं शहीद किए गए, तो ख़त्म हो गई। ये इरादों के इम्तिहान होते हैं, अल्लाह हमारा स्टेमिना देख रहा होता है। अल्लाह को भी पता है कि आपकी क्या मजबूरी है, वो खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनाता है। तो लक़द रदी अल्लाह, अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो दरख्त जिसके नीचे साहबा ने ये बैत की, अगले साल भी नहीं था याद कौन सा है। इस्लाम ऐसी चीज़ों के तबरुकात के पीछे नहीं फिरता कि वहाँ की मट्टी लें और मरियम बूटी ले लूँ और मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, काम पे फोकस है। हज़रत उमर के दौर में पता चला कि कुछ लोग एक दरख्त के नीचे बैठ के इबादत करते हैं ये सोचकर कि इसके नीचे बैत हुई थी। आपने सारे दरख्त कटवा दिए, शिर्क के मज़र काट देने चाहिए कि अल्लाह के बंदो हम तो सन 7 हिजरी में उम्र कज़ा के मौके पे आए, हमें नहीं पता था वो कौन सा दरख्त है। आज हमारा मिजाज ये हो चुका है, कोई जाएगा तो मट्टी ले आएगा, कोई खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा ले आएगा, कोई जमजम में भीगे हुए कफन लेकर आ जाएगा। और बेअमली का हाल देख लीजिए, हर मस्जिद में कुरान पढ़ा जा रहा है, कितनों को समझ आता है, कितनों की आंखें रोती हैं, कितनों का दिल उस वक्त फट रहा होता है कि अल्लाह तेरा कलाम है कि ये एक समंदर है। तो बहरहाल अल्लाह हमें ऐसी ही कमिटमेंट्स करने की तौफीक अता फरमाए।